और 30 अक्षरी छंद तक ज्ञानमती माता जी ने 24 भगवान की स्तुति की है। एक अलौकिक ग्रंथ आज तक कोई विद्वान नहीं लिख पाया, नहीं जान पाया। 50 साल पहले, करीब 52 साल पहले ज्ञानमती माता जी ने इस ग्रंथ को लिखा। इसके अंदर एक एक भगवान के सारे कल्याणक, सारी भूमिया, उनके माता पिता के नाम, उनकी अवगाहना, उनके शरीर का वर्ण, उनका चिन्ह, कुछ भी शेष नहीं रहा। क्रम क्रम से करें अनेक माह में आप अब 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के जीवन पर आ गए। और इसमें 21 अक्षरी छंद से पूज्य माता ने शुरुआत की। श्रगधरा छंद, उसको भी आपने पढ़ लिया। दूसरे छंद को हमने पढ़ा मत्त विलासिनी छंद, 21 अक्षरी। इसी में पुस्तक में नीचे छंद के लक्षण भी लिखे हैं। इससे कोई अज्ञानी से अज्ञानी जीव भी नीचे छंद पढ़ेगा, ऊपर भगवान की स्तुति को पढ़ेगा। ये किताबें हैं, आप ले लीजिए। और विद्वानों के लिए तो ऐसी अमूल्य कृति है कि वे स्वयं पढ़ें और अपने शिष्यों को, अपने सहपाठियों को इसे पढ़ाएं। अब हम चलते हैं, 22 अक्षरी छंद है, प्रभद्रक छंद, बड़ा छंद है। इसमें भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करते हुए ज्ञानमती माता जी कहती हैं, ध्यान निमग्न पार्श्व मुनिपम विलोक्य कमठासुरः कुपितवान् मूसलधारी उग्र पवनैर् भयंकर महोपसर्गमिति सह वन्निकणान् बवर्षं वृषदृषदा पिशाच परिवेष्टितश्च कृतवान् मंदर शैल वद्रढ़ मनाः चचाल नहीं योग तो जिनवरः। ऐसी मेरु के समान अचल पार्श्वनाथ भगवान रहे तभी तो वे तीर्थंकर बन पाए। उनके ऊपर तो कमट ने 10 भाव तक उपसर्ग किया। तो इसमें कहा ध्यान निमग्न पार्श्व मुनिपम, ध्यान में लीन हुए पार्श्वनाथ भगवान को देखकर कमठासुरः कुपितवान, जो कमठासुर था वह कुपित हो गया। पूर्व भाव का बैर निकालने के लिए, बैर का बदला लेने के लिए, सा मूसलधारिया उग्र पवन ही, उसने मूसल जल धारा बरसाई। उग्र पवन के द्वारा उसने खूब उपसर्ग किया, खूब हवा चलाई, तूफान चलाए, पत्थर पर्वत से पत्थर फोड़ फोड़ करके उनके ऊपर फेंका। भयंकर महोपसर्गम इति चक्रतवान, भयंकर महा उपसर्ग किया। पिशाच परिवेष्टितः, पिशाच से परिवेष्टित होता हुआ, यानी कई पिशाचों के, वेतालों के रूप बना बना करके कि भगवान किसी तरह डर जाएं, किसी तरह ध्यान से विचलित हो जाएं, ये भगवान ना बनने पाए। तो ऐसे ऐसे उपसर्ग किया। वन्निकणांच दृषदः ववर्ष, अग्निकणों को और पत्थर को खूब बरसाया भगवान के ऊपर। हे पार्श्वनाथ भगवान, आपके ऊपर इतना इतना उपसर्ग कमट ने किया तो भी मंदर शैलवत दृढ़ जिनो रहा योग्यता नहीं चचाल, सुमेरु पर्वत के समान आप अचल बने रहे। कोई सुमेरु पर्वत को हिला सकता है? नहीं हिला सकता है। ऐसे ही भगवान पार्श्वनाथ को कोई भी उपसर्ग कमट का हिला नहीं सका, वे चलायमान नहीं हुए और ध्यान में लीन रहे। ऐसे भगवान पार्श्वनाथ को बारंबार नमन करने से अपने अंदर भी उपसर्ग सहन करने की शक्ति आती है। आगे चलते हैं, अश्वललित छंद जो 23 अक्षरी है। फणपति रासनस्य चलनात्वरम सहसमाय यौवनितया असित मधौ चतुर्दश दिने सुबोध रवि रुद्य यौच जिनते गलित मदस्तदा सकमठासुरो जिन विभूषिता सदसी वै जिन वचन औषधम किल पपौ समस्त भव रोग शांत करणम। इस अश्वललित छंद के अंदर बड़ी बड़ी लाइनें हैं और 23 अक्षर, एक एक लाइन में 23-23 अक्षर, और एक एक अक्षर का संस्कृत के अनुसार, छंद के अनुसार, दीर्घ और रस के अनुसार शब्दों का चयन करना, उसके अंदर अर्थ भरना, ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रतिभा शक्ति का द्योतक है। ऐसी प्रतिभा शक्तिमान ज्ञानमती माता की आप साक्षात दर्शन कर रहे हो। जलो महाविदुषी ज्ञानमती माता जी की। भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करते हुए ये हमेशा कहती हैं कि भगवान पार्श्वनाथ हमें उपसर्ग झेलने की शक्ति देना। अब इसमें भी क्या कह रही हैं कि आसनस्य चलना त्वरम फणपति वनितया सा समायो। जब कमट उपसर्ग कर रहा था तब क्या हुआ, एकदम से पाताल लोक के अंदर धर्णेन्द्र पद्मावती का आसन कंपायमान हो गया और आसन के कंपायमान होते ही शीघ्र ही धर्णेन्द्र देव अपनी भार्या पद्मावती के साथ वहां आ गए। क्योंकि नाग नागिन की पर्याय में पार्श्वनाथ ने कुमार अवस्था में उनको नमोकार मंत्र सुनाया था, उन्हें शांति का उपदेश दिया था, तो वे मर करके शांतिपूर्वक मर करके धर्णेन्द्र और पद्मावती हो गए। वहां पर अवधि ज्ञान से याद आ गया, अरे मेरी प्रभु के ऊपर उपसर्ग कर रहा है कोई, एकदम वहां आ गए। तो कहते हैं असित मधव चतुर्दश दिने, चैत्रवधि चतुर्दशी के दिन, जनरल तो चैत्रवधि चतुर्थी को भगवान पार्श्वनाथ का केवल ज्ञान माना जाता है, लेकिन उत्तर पुराण के अंदर ज्ञानमती माता ने देखा तो आज चतुर्दशी आई। माता जी कहती दोनों दिन कर लो, क्योंकि जनरल में चतुर्थी चलता है। इसमें लिखा है इन्होंने कि चैत्रवधि चतुर्दशी के दिन जिन चे सुबोध रवि उदय, हे जिनराज आपके केवल ज्ञान सूर्य उदित हो गया। आप तो उपसर्ग सहने में एकदम कुशल थे ही, लेकिन धर्णेन्द्र पद्मावती ने आकर के अपना कर्तव्य निभाया और भगवान की भक्ति की और अपनी शक्ति से उस कमठासुर देव को भगा दिया। क्या कर रहा है तू, और एकदम चिंघाड़ मार करके उसकी शक्ति को एकदम शांत कर दिया और भगवान अपने ध्यान में लीन हो गए और तुरंत उनको केवल ज्ञान हो गया। अही छत्र क्या है, अही छत्र में भगवान को केवल ज्ञान हुआ था, वो धर्णेन्द्र पद्मावती की उद्भव स्थली है, वहीं वो धरती से प्रकट हो गए थे। तदा सह कमठासुरा गलित मदा जिन विभूमसिता, जो अभी तक नहीं मान रहा था दस भाव से, वो अब जा करके धर्णेन्द्र पद्मावती के प्रताड़ना के कारण और उनकी भक्ति देखकर, उनके द्वारा भगवान का उपसर्ग समापन देख करके, वह भी गलित मदह मद से रहित होकर के, यानी अपना अभिमान छोड़ करके, मिथ्यात्व छोड़ करके, सम्यक दृष्टि बन करके जिनेन्द्र भगवान पार्श्वनाथ के आश्रय में आ गए। सदस्य वह समस्त भवरोग शांत करणम जिन वन वचनौ सदम किल पपो, और समोसरण में संपूर्ण भवरोग को शांत करने वाली ऐसी जिन वचनामृत रूप औषधि को पी लिया। जिन वचनामृत को औषधि की उपमा दी है, किसी को रोग होता है तो डॉक्टर टेबलेट देते हैं या पीने की दवा देते हैं या इंजेक्शन देते हैं या ड्रिप लगाते हैं, करते नहीं स्वस्थ करने के लिए। तो भगवान की वचन रूपी औषधि जो है वो किसी भी तरह से जो भवेजन पी लेते हैं, पान कर लेते हैं, सुन लेते हैं, धारण कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, अपनी आत्मा के अंदर गुण लेते हैं, तो वो समझो उस औषधि को पी लेते हैं और उनका भव रोग, संसार का रोग, कर्मों का रोग जो है ठीक हो जाता है। ऐसे भगवान पार्श्वनाथ भव रोग को शांत करने वाली जिनकी वाणी है, चैत्रवधि चतुर्थी को जिन्हें केवल ज्ञान हुआ या चैत्रवधि चतुर्दशी को केवल ज्ञान प्राप्त करके भगवान ने संसार को उपदेश दिया, उसके माध्यम से न जाने कितने भव्य प्राणी अहि छत्र के प्रथम समोसरण रचना में न जाने कितने भव्य प्राणियों को बोध आया और उन सब लोगों ने भी सम्यक दर्शन को धारण करके मोक्ष मार्ग को अपना लिया। ऐसे भगवान पार्श्वनाथ की अनेक छंदों में स्तुति करने वाली ज्ञानमती माता की छत्र छाया में बैठकर इन स्तुतियों को पढ़ करके विशेष रूप में भावों के अंदर विशुद्धि आती है। क्योंकि हमने उन महान मानतुंगाचार्य को नहीं देखा जिन्होंने भक्ति करके ताले तोड़ दिए, हमने और अन्य तमाम मुनिराजों को नहीं देखा, उन सतियों को नहीं देखा है, उनकी कहानियां पढ़ते हैं कि उन्होंने ऐसा स्तोत्र रचा, ये पढ़ा तो ऐसे ऐसे उनके कर्म शांत हो गए, उनके साथ ऐसा चमत्कार हो गया। और ज्ञानमती माता को तो हम साक्षात देख रहे हैं, इन्होंने तमाम स्तुतियां रची और उन स्थितियों के माध्यम से आज इनको भी तमाम कभी भी कुछ बीमार होती हैं इन्हीं स्तुतियों को सुनती हैं, कभी इंद्रध्वज विधान को सुनती हैं, कभी सिद्ध चक्र विधान की जयमालाओं को सुनती हैं और उसी से कहती हैं कि मेरा रोग शांत हो जाता है। देखो अभी एक महीने पहले बीमार हुई नहीं, बीमार हुई सबने शांति धारा की, उधर शांति धारा चलती थी और इधर इनके मन में शांति धारा चलती थी। मन के अंदर कहती थी हमेशा हम लोगों से कि शरीर भिन्न है आत्मा भिन्न है, आत्मा भिन्न है शरीर भिन्न है, यही तो समय है कि मैं चिंतन करूं और उसे प्रैक्टिकल अनुभव करूं। तो ऐसी स्तुतियों के माध्यम से इन्होंने अपने शरीर से खूब कार्य करके और भगवान की भक्ति करके सबको भक्ति का परिचय दिया है। तो उनके सानिध्य में जब मैं इस ऐसे स्तोत्रों को या इनके लिखे ग्रंथों को पढ़ती हूँ, ऋषभदेव चरितम पढ़ के रोम रोम पुलकित हो जाता है कि देखो किस तरह से पूर्व भवों की भवावली भगवंतों के साथ चली आ रही है, ऐसे हम सबकी भी भावावली ज्ञानमती माता जी के साथ चलती जाए और मोक्ष प्राप्त होने तक हम सब एक साथ में जाकर और पुनः सिद्धशिला पर विराजमान हो जाएं। यही स्वाध्याय का मैं सार समझती हूँ। जब लो ऋषभदेव भगवान की